نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 سے 50 تک کریں گے. پچھلے سبق پہ امید ہے آپ نے غور و فکر کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی سزائیں اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہیں ایسے جرائم پر جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے سکونی، بے چینی، بد امنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ سزائیں نافذ کی جائیں تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. مگر صرف سزائیں نافذ کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پورے نظام کو رائج کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سزا تو نافذ کر دی جائے، کیا ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دی گئی، اب اس کے بعد کیا حالات ہیں اس ملک میں، سود کی وجہ سے امیر امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب ترین ہو جاتا ہے، چور بازاری ویسے ہی ہے، رشوت ویسے ہی ہے، سب چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، اور بس ہاتھ کاٹنے کی ایک سزا دی جا رہی ہے، جس کی اب جو معاشرے کے اندر ان بیلنسڈ جو حالات ہو جاتے ہیں کہ ایک اتنا اوپر چلا جاتا ہے، ایک اتنا نیچے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر وہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، پھر چوریاں بھی ہوتی ہیں، پھر ڈاکے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اور چیزوں میں بھی جب بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی ہے تو زنا کے ظاہر دروازے اور کھل جاتے ہیں. اور صرف سزا کو نافذ کر دینا کافی نہیں ہوتا، پھر پورے نظام کو ایک صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، دھلائی کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے ساری چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں، ایک چیز سے نہیں کچھ ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہی بات پڑھیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ پورا نظام، پوری جو سسٹم ہے، پورا جو سٹرکچر ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جیسے اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں. اگر صرف ایک طرف سے چیز پکڑ لی جائے تو اس سے پورا نظام صحیح نہیں ہو سکتا. ایک صرف سزاؤں کا ہی سسٹم رکھ لیا جائے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ایسا ہوگا، جب تک سارا نظام آپ وہ نہیں لے کر آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ساری آج بات زیادہ تر اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو سیریس نہیں لیا جاتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آج آیت نمبر 41 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور آپ کو کیا فرمایا جا رہا ہے، لا یحزنک، آپ غم نہ کریں. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنی زیادہ محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات اتارتا ہے، وہی آسمانوں سے اترتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے. آپ غم نہ کریں اے نبی. کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اپنے بچوں کے فیوچر کی وجہ سے، کیا چیز ان کو غمگین کیے ہوئے تھی؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، یہی چیزیں ہوں گی، جاب نہیں ہے، یا بچوں کے مستقبل کا کیا ہے، ان کی شادیوں کا کیا، یہ چیز ہمیں غمگین کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں بھاگ دوڑ کرتی ہیں. کیا مطلب بھاگ دوڑ؟ کہیں دوڑے لگا رہے ہیں؟ نہیں، मतलब इनकी जो फुर्तियां हैं, इनकी जो हमदर्दियां हैं, इनकी जो इंक्लिनेशन है, इनकी जो इन ये जिस तरफ को ये मायल होती हैं, वो कौन लोग हैं? वो हैं जो काफिर हैं। काफिरों के साथ इनके मेल मिलाप, इनकी गठजोड़, इन इनके मफादात उनके साथ हैं। हालांकि ये हैं कौन लोग? अब काफरों के तो काफरों के साथ हों, वो तो एक अलग बात है, जाहिर है उनके तो उनके साथ होंगे ही, मगर ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मीन अल्लज़ीना कालू आमन्ना बी अफवाहिम। दुख तो इसी बात का है कि ये वो लोग हैं जो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये इस्लाम को मानने वाले, लेकिन वफादारी किसके साथ है, दिलचस्पियां किसके साथ है, उठने बैठने किसके साथ है, मेल जोल किसके साथ है, और उन दिल किसके साथ लगे हुए इनके? काफरों के साथ, हर वक्त उनकी तरफ झुकाओ है। और कहते क्या कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप पे ही मान लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम क्यों होता था? देखिए मुंह से, अच्छा एक बात और आगे कर लेते हैं फिर बात करते हैं। मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, बोले हम तो मीन कुलूबों, और लेकिन इनके दिल नहीं ईमान लेकर आए हुए, हालांकि इनके दिल ईमान से खाली है। यानी किस वजह से ये कहा गया? क्योंकि इनकी सारी एफिलिएशन जो है वो काफरों के साथ है, सब सरगर्मी एक्टिविटीज जो है ना, भाग दौड़ उनके साथ है। मुसलमानों में तो ये शुभात फैलाते हैं, मुसलमानों के साथ तो इनके कोई हमदर्दी नहीं है, उन इस्लाम की तो जड़ें काटने लगे में, हमेशा उनकी तरफ को झुकते हैं, उनके साथ जाके मिलते हैं। खुद सोचें। अच्छा अब हमें क्या पता चलता है कि किन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन किया हुआ था, क्यों आप ये गम पाल रहे थे? पहली बात तो ये कि देखें दुख किसका होता है, पराए का नहीं दुख होता, वो तो एक पराए हैं ही, वो जो कुछ गलत भी करते हैं, कोई हमारे दुश्मन हो, कोई हमारे मुखालिफ हो, वो हमारे बारे में कुछ बोले तो उनका नहीं दुख होता, वो तो है ही ऐसे ना, अब आप कहते हैं वो है ही हमारे मुखालिफ, वो तो कुछ कहेंगे। दुख कब होता है? जब आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका अपना बच्चा है, या आपके अपने घर वाले हैं, आपका ही शौहर है, वो कहीं जाके आपको बैड माउथ करे, वो कहीं आपके खिलाफ बोले, वो कहीं अपने ही घर की जड़ें काटने लगे, आपकी दोस्त आपके ही राज जाके, जिसको आप इतनी अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती और वो हर वक्त आपकी मोहब्बत का दम भरती, वो किसी मजलिस में जाके आपके खिलाफ बातें करे, आपके राज वहां पे बताए, तो दुख उनका होता है, दुख अपनों का होता है, गैरों का नहीं होता। ये लोग जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने शहादत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मुसलमान हुए, वो ये बातें कर रहे हैं, वो उनके पास जा जाके बैठते हैं और उनके साथ हमदर्दियां रखते हैं। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इसका अंजाम क्या है। आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी दफा आपको तसल्लियां दी, ऐ नबी कि आप अपने आप को हलकान कर लेंगे इनके पीछे, ऐ नबी कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इनके पीछे कि ये नहीं मानते, ऐसे लोगों को देखना कि जो कलमा पढ़ के भी ईमान ना ला पाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठ के भी कुफर पे हैं, उनके दिल ईमान से खाली हैं, तो कितना दुख हो। सोचें आप अपने बच्चे को इतना इस्लाम का बताएं, इतना दीन का बताएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो एक दिन उठ के खड़ा हो जाए और इस्लाम के और आपके खिलाफ ही बोलने शुरू हो जाए, तो कैसा लगेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माँ बाप से भी ज्यादा हमदर्द थे, उन्होंने जो इनको टीचिंग्स दी, जो इनको सिखाया, समझाया, बताया, उसके ऊपर तुम ये कर रहे हो कि तुम उनकी गोदों में जाके बैठते हो? ये था मुनाफिकीन का किरदार, ये थे मुनाफिक। तो इससे पता चलता है कि मुनाफिकीन जो थे, ये चूंकि आखिरी सूरतों में से है सूरह माईदा, मुनाफिकीन तब भी मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए भी गम में घुलते थे। और वमीन अल्लदीना हादू, और यहूदियों के लिए भी, अब देखें आप यहाँ पे भी वक्फ कर सकते हैं, और वमीन अल्लदीना हादू सम्माउन लिल कज़िब, वहां के साथ इस चीज को जोड़ सकते हैं, या फिर आप हादू पे वक्फ कर सकते हैं कि इन दो ने आपको गमगीन किया हुआ था कि यहूदी भी, मीन अल्लदीना हादू उन लोगों में से जो यहूदी हुए, यानी अल्लाह ने नहीं उनको यहूदी बनाया था, उन्होंने खुद ही अपना नाम रख लिया था यहूदी, तो ये लोग भी क्यों, इनसे भी क्यों दुख होता था? इसलिए कि तुम तो अल्लाह को मानने वाले हो, तुम तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे हो, तुम तो पैगंबरों के मानने वाले हो, आखरत के दिन पे ईमान रखने वाले हो, यानी गोया इस्लाम से पहले तो यही मुसलमान हुए ना, जो ईसाई थे, यहूदी थे, किताब वाले हो तुम, इल्म वाले हो तुम, फिर तुम भी यही काम कर रहे हो। कि देखें आप इस वक्त भी दुनिया में देखें, हम किन को अपने से करीब ज्यादा समझते हैं? अहले किताब को, उनको जो यहूदी और ईसाई हैं, जो बुत परस्त हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो और मुशरिक हैं, उनको नहीं हम क्लोज समझते। हमें अपने कुर्बत ज्यादा किससे नजर आती है कि जो इल्हामी मजाहिब के ऊपर ईमान रखने वाले, यानी अल्लाह ने जो उनको आसमान से उतारा, जिन मजाहिब को, उन पे ईमान रखने वाले, तो कुछ ना कुछ हमारी हमेशा हमदर्दी उनके साथ हो जाती है, जबकि एक तरफ काफिर हो, मुशरिक हो, तो दूसरी तरफ अगर इनमें से कोई हो तो उसके साथ हम सोचते हैं ज्यादा कि हम इनसे एफिलिएट कर सकते हैं। लेकिन तुम भी जाके काफरों की गोदों में बैठ रहे हो, तुम भी हमदर्दियां उनसे रखते हो, और फिर करते क्या थे? सम्माउन लिल कज़िब, झूठ के बहुत ज्यादा रसिया, झूठ के बहुत ज्यादा सुनने वाले। क्या मतलब इसका? एक मतलब तो इसका ये है कि जासूसी करने वाले हैं। और सम्मान मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा, यानी गौर से सुनना, और जब इंसान ने जासूसी भी करनी होती तो बड़ी कान लगा के सुनता है, जासूसियां करते हैं, यहां से बातें लेके वहां पहुंचाते हैं, काफरों को बताते हैं, इधर आके बन बन के बैठते हैं कि हम तो ईमान वाले, या यहूदी आके बैठते हैं कि हम तो आपकी बातें बड़ी सुनने के लिए आए हैं, लेकिन असल में मकसद क्या होता है? मुखबिरियां करना, इधर की उधर ले जाना। तो दुख नहीं होगा कि ये तो अपने अपने आस्तीन के साम बन जाए तो उनके ऊपर कितना दुख होता है, और दुश्मन को जाके बताते। तो झूठ के लिए, यानी झूठ के लिए ये सुनते हैं कि आगे फैलाएं इन बातों को, दूसरों तक पहुंचाएं, लिकौमन आखरीना लम यातूक, उस कौम को जाके बताएं जो यहां पे आए नहीं, यानी अपने सरदार हो गए या काफिर हो गए या ऐसे लोग हो गए जो अभी इस्लाम से वाकिफ ही नहीं है, तो उनके जाके अच्छा दूसरा माना मैं उसका बताऊंगी, अभी आप ये लिख लें कि लिखो मिन आखरी लम यातू में वो लोग आ गए जो इनके सरदार या जो काफिर लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनकी तक ये जासूसी करने के लिए ये बातें सुनते थे और उनको पहुंचाते थे। अब दूसरा माना, सम्माउन लिल कज़िब, बहुत ज्यादा गौर से सुनते हैं बातें, जो बातें झूठ की होती हैं, जो झूठी बातें होती हैं उनकी बहुत रस्सियां, यानी उनकी दिलचस्पी सच्ची बात से नहीं होती, सच्ची बातों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखिए झूठ का भी ना एक मिजाज होता है, कुछ लोगों को झूठी ही बातें अच्छी लगती हैं, उनके पास सच्चा कलाम अल्लाह का आ गया उससे कोई दिलचस्पी नहीं, वो झूठी कहानियां जो लोगों ने लिख लिख के, अफसाने, ड्रामे, नावल, ये फिल्में, ये जो जितने भी हैं ये सारे झूठ है ना, उनका मिजाज ही क्या, उनका दिल झूठ में लगता है, उनको उसमें मजा आता है, सच्ची बातें उनको अच्छी लगती है। हालांकि सोचा जाए तो खुद सोचें कि एक बंदा बैठा हुआ है और उसने अभी, अजीब ही मुझे ये बात लगती है ना कि उसने ये सोचा मैं उसका फलाने के साथ कोई चक्कर शुरू करा देता हूं, अब मैं उसको मरवा देता हूं, अब मैं ऐसा कर देता हूं, अपने कलम से लिखने लगा हुआ, इससे बड़ी थ्रिल पैदा हो जाएगी, फिर अब मैं ऐसी कोई बात लेकर आऊं कि जिससे बस लोग अपनी सीटों से उठ के खड़े हो जाएं। अब वो ऐसी बातें लिखते हैं और हम इतने शौक से देख रहे होते हैं कि क्या है सारा झूठ का पलंदा, उसके सिवा कुछ नहीं, लेकिन उस झूठ को हम कितना एंजॉय करते हैं और उस झूठ को डिस्कस भी करते हैं। क्या है वो, एक बंदे का दिमाग है
वो आपको ले लेके किन वादियों में घूम रहा है, और हम भी इतनी, ये भी हमारी बेवकूफी कह सकते हैं कि अपना कीमती वक्त जिंदगी का जाया करते हैं किसमें, इन चीजों के पीछे, कि कोई एक बंदा हमें जहां मर्जी दौड़ाए फिर रहा, उसका दिल किया कि अब मैं इसमें ऐसा सस्पेंस डाल दूं, तो आप बस दिल पकड़ के बैठे हैं अगले हफ्ते क्या होगा, अगली किस्त में क्या होगा, वो देखना चाहते हैं। क्या बेवकूफी की इंतहा है ये, क्या झूठ के पीछे लगे हुए हो, सच्चाई की तरफ आओ। हम कहते हैं हमने सबक सीखने हैं इसे, आधे से ज्यादा तो कोई इनमें सबक नहीं होते, सबक से ज्यादा उनमें खुराफात होती हैं, फजूल बातें होती हैं। और सच्ची बात अगर सबक से रिलेटेड लेनी है, तो ये कुरान है जो आपको सच्चाई के साथ वो सबक सिखाता है जो रियलिटी के हैं, ऐसे नहीं कि जो किसी ने भी बना के रखे हैं। तो इनका मिजाज क्या है, बहुत सुनते हैं, बड़े चस्के लेते हैं झूठ के लिए, और झूठ कैसे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बातें हो जाएं, कोई इस तरह के प्रोपोगंडास हो जाएं, उनको बड़े शौक से सुनेंगे, और सुनेंगे लोगों के लिए कि उनको पहुंचाएं जिनके जो आप तक नहीं आए, यानी ऐसे लोग मासूम भोले भाले जो अभी इस्लाम से वाकिफ ही नहीं हुए, उनको जाके झूठी झूठी बातें, ये कि नहीं जी ये तो ऐसे हैं, ये तो वो हैं, पता नहीं ये तो जादूगर हैं, ये तो फलां हैं, ये तो ऐसा कर देते हैं, ऐसी बातें जो झूठी बिल्कुल बेसलेस बातें, वो जा जाके ऐसे लोगों को बताते हैं जो आपकी मजलिस में अभी आए नहीं, वो इस्लाम से आशना नहीं है, उनको पता नहीं है इस्लाम का, तो इनकी सारी तवज्जो बातिल बातों पे है, झूठी बातों पे है, समझ आए। तो ये मिजाज भी ऐसे लोगों का, जो ये मिजाज है इसको कंडेम किया गया है, ये कोई यानी काबिले तारीफ बात नहीं है। सच्चाई के शौकीन होना चाहिए हमें, सच बात हमें अपील करनी चाहिए, और झूठी बात हमें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, हमारे मिजाज ऐसे होने चाहिए कि ये सारे झूठ है, हम झूठ क्यों सुने, मैं क्यों झूठ पे अपना टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, जो मैंने आपको पहले बताया कि जासूसियां करते हैं, इधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी, इधर का उधर बता दिया, और ना ये भी औरतों के अंदर बहुत कॉमन एक बीमारी होती है, इधर बैठे इधर की बातें सुन के सारी जाके उधर लगा दे, ससुराल की बातें जैसे सारी मैके में उगल दी, क्यों, उधर की कोई इज्जत नहीं है। फिर इसी तरह कहीं दोस्तों की बातें इधर की इस मजलिस में बैठे तो उधर जाके बता दी, शुरू कर दी, ये क्या, ये जासूसियां, ये मुखबिरियां करना, ये कोई पसंदीदा बात नहीं होती, क्योंकि कोई आपके सामने ट्रस्ट करता है तो वो अपनी कोई राज की बात या अपनी कोई प्राइवेट बात आपके सामने रखता है, और वो ये उसके जहन के अंदर ये बात होती है, अंडरस्टूड होता है कि आप किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी बात फैलाते फिरना, मैंने तो ऐसा देखा, मैंने तो ऐसा सुना, वो तो ये कर रही थी, ये तो सब बातें ये औरतों में बहुत कॉमन है, और लेकिन ये किन के तरीके होते थे, मुनाफिकों के, इधर की उधर लगाते रहना। देखें ये वो लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के भी महरूम थे, और ये बहुत ही बड़ी बदनसीबी होती है कि इंसान एक नेकी की, एक दीन की, एक अल्लाह की मजलिस में बैठे और उसके बाद भी उठ के जाए तो उसके काम ये हो। बहुत से लोग कुरान की क्लासें भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका एजेंडा क्या होता है, आज भी उनका एजेंडा क्या होता है, जासूसियां करना, जासूसी करना होता है, देखें तो सही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। या बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि यहां से कोई बात पिक की जाए और फिर सारी तरफ फैलाई जाए, देखा नहीं, वो तो ऐसे कह रही थी, वो तो ये बता रही थी, वो तो वैसे कर रही, यानी सिर्फ बदनाम करने के लिए झूठी बातें फैलाना। तो ऐसे लोग आज भी मौजूद है, ये सिफात रखने वाले लोग हैं आज भी, अल्लाह ताला इससे भी महफूज रखे, और हम अल्लाह की मजलिस से अपने दिलों को पाक करके उठें, ना कि ऐसा हो कि हमारे दिल वैसे के वैसे हों और हम कुछ अपने मतलब की, क्योंकि जिसका जो जैसा मिजाज होता है ना वो वैसी ही चीज लेता है, कुछ का मिजाज ही ऐसा है कि वो हर चीज के अंदर से, जैसे गंदी मक्खी जो होती है वो गंद पे ही बैठती है, तो जिसका मिजाज ऐसा होगा कि वो खैर की मजलिस से भी कोई ऐसी बात, कोई शोशा ही लेके उठे, तो वो उसके मिजाज की कसूर। और देखिए आप, दूसरी एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला के हाँ पता चला कि मुंह से ईमान के दावे करने ये कोई काफी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हाँ वो क्या है, लम तुमिन कुलूब, उनके दिल तो ईमान वाले नहीं है। यानी दिल का ईमान लाना जरूरी है। मुंह से जो मर्जी कहते जाओ, मेरा नाम आयशा, मेरा नाम फातिमा, मेरा नाम खदीजा, मेरा नाम ये, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुंह से कलमे पढ़ते जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका दिल साथ नहीं। और इनका प्रॉब्लम ये था, इनके दिल साथ नहीं थे। और हमने पढ़ा है ना पहले कि जो काफिर है वो उस दिन पूरे जमीन में जो कुछ है वो सब कुछ भी देना चाहे, और जो जैसा भी तो भी उसके कुछ काम ना आएगा, उसे कबूल ना किया जाएगा, इसलिए कि दिल में कुफर है। इवन अगर नेकी के भी बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन ईमान नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। आप देखें अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में, पहले भी मैंने आपको उसके बारे में बताया, इतना सखी था, लोगों को इतना खाना खिलाता था, खजूर सत्तू दूध का बंदोबस्त करता था लोगों को खिलाने के लिए। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि दूध का इंतजाम करना। मुल्के शाम की तरफ इसके 2,000 ऊंट गए थे जिन पे गेहूं था, शहद था, घी था। वो वहां से वो 2,000 ऊंट ये सब कुछ लाद के मक्का लाए। फिर उसने एक ऐलान किया कि ये जिम्मेदारी लगा दी एक ऐलान करने वाले की कि हर रात खाना काबा की छत पे चढ़ के लोगों को खाने की दावत दो। हर रात मुनादी ऐलान करता था कि अब्दुल्ला बिन जुदान की जो देग है उसकी तरफ आ जाओ, यानी उसकी दावत कबूल कर लो। इतना सखी था, इतना सखी था। सही मुस्लिम की शरह में इसकी देग के मुतल्लिक आता है कि अब्दुल्ला बिन जुदान की जो दावत एताम वाली देग होती थी वो इतनी बड़ी होती थी कि उससे ऊंट सवार सवारी की पीठ पे ही खाना लेकर खा लेता था, इतनी ऊंची वो देग होती थी, इतनी बड़ी। अब देखें कितना वो स्पेंड करता था, कितना वो खिलाता था, और खिलाना खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान की देह की छाओं में साया हासिल करता था, और इस देह से खाना निकालने के लिए सीढ़ी की मदद ली जाती थी। लेकिन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के रसूल, इब्ने जुदान जमाने जाहिलियत में बड़ी सिला रहमी करता था, बड़ा गरीबों में खाना खिलाता था, क्या ये सब उसके लिए आखरत में नफा बख्श होगा? आपने फरमाया नहीं, ये सब उसके कुछ काम ना आएगा, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं कहा ऐ मेरे परवरदिगार कियामत के दिन मेरी खताओं को बख्श देना। यानी वो ईमान नहीं लाया, उसने बंदगी का इजहार नहीं किया, वो अल्लाह का आबद नहीं बना, तो अल्लाह ताला क्यों उसको बख्शे? फिर इससे पता चलता है कि नेकी के काम भी काम नहीं आएंगे अगर इंसान के पास ईमान नहीं है। तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, और इस दौलत के लिए हमेशा इसके इजाफे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे ईमान में इजाफा करते जाना, और मेरे ईमान को मरते दम तक कायम रखना। इस चीज से हमेशा डरते रहना चाहिए कि अल्लाह कहीं मेरा ईमान मुझसे ना चला जाए, दुनिया चली जाए ईमान ना जाए, जान चली जाए ईमान ना चला जाए, ये दुआ करते रहना चाहिए। क्योंकि ईमान भी इंसान का हमेशा एक सा नहीं रहता, और इंसान का ईमान छिन जाने में भी देर नहीं लगती। तो ये वो लोग हैं, मुंह से तो इनके दावे हैं कि हम ईमान वाले हैं, दिल में तो ईमान है ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुखी करते थे ये लोग, अल्लाह अकबर। लेकिन देखें तसल्लियां कहां से आ रही हैं, आसमानों से। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादी मवादिही, ये अब खास तौर पे यहूद की बात, ये तहरीफ करते हैं बातों को, उसकी जगह से हटा देते हैं। पहले हमने पढ़ा था अम मवादिही, अब हमने पढ़ा من بعد مواضعه, تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ام مواضعه جو ہے وہ لفظی تحریف کے لیے آتا ہے, لفظ لفظی پہ بدل دیتے تھے یہ, یعنی ان کو کوئی شرم نہیں آتی تھی. میں نے پہلے آپ کو جو پڑھایا تھا سورہ دوسری سورت کے اندر, تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ان لوگوں کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے, نہیں سورہ مائدہ میں ہی پڑھا تھا کہ ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ یہ اللہ کے کلام میں بھی ہیر پھیر کرنے میں ذرا بھی ہار محسوس نہیں کرتے تھے, تو لفظوں کو بھی بدل دیتے تھے. اور یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ ام من بعد مواضعه, یعنی اس کا معنی متعین ہونے کے بعد کہ معنی بتا دیا گیا, اب اس کا معنی ہی بدل دینا, معنی کچھ سے کچھ کر دینا, یہ ان کی حرکتیں تھیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا, یہ کہتے تھے اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا, اگر نہ دیے جاؤ تو نہ لینا. اب اس کے پیچھے جو اس کی شان نزول میں دو واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں, آیت نمبر 41 سے 44 تک کی آیات کی شان نزول میں. ایک تو واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو شادی شدہ یہودی تھے, مرد اور عورت, جنہوں نے زنا کیا. اب وہ اچھے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے, اب ان کو کیسے رجم کیا جائے, کیونکہ تورات میں تو شادی شدہ زانی کی سزا بھی رجم ہے, جیسے ہماری شریعت میں بھی یہی ہے. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم کیا کریں, تو انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, اگر وہ ہمارے مطابق فیصلہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی جو ہماری مرضی ہے اس کے مطابق تو صحیح ہے, ہم قبول کر لیں گے. اگر وہ بھی رجم کی کہتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے ہم نہیں ماننا. اب انہوں نے اپنے دین میں کیا ایجاد کر لیا تھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ معنوں میں تحریف کر لینا یہ کہ ان کے لیے کامن تھا, لفظوں میں تحریف کر لینا یہ بہت ہی آرام سے کر لیتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کیوں آپ کے پاس کیوں آئے, ان کی اپنی بھی تو عدالتیں تھیں. دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا, تو یہ تھا کہ اب ویسے تو جو مدینہ کے جو سارے افیئرز ہیں ان کے انچارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, لیکن جو عام جو معاشرے کے جو جرائم ہیں یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں, کوئی جھگڑے ہیں, تو سب اپنے اپنی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہودی آپس کے اندر ان کو اپنے کو طے کر لیں, مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, اور کبھی کبھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے تھے فیصلے لے کے کہ آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرتے. تو ہوا یہ کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے. اب جیسے کہ ان کی کتاب میں تو کیا تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اس کو بدل دیا ہوا تھا, اور کہتے تھے 100 کوڑے مار دو, منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے اور شہر میں گھما دو, بس یہ اس کی سزا ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے جب پوچھا, سوال کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا سزا ہے اس کی, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ سزا ہے. اب وہاں پہ حضرت عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اپنی کتاب لے کر آؤ. وہ تورات لے کر آئے, آپ نے فرمایا اسے پڑھو, آئے تھے پڑھنی شروع کی ہوں تمہیں. اور وہاں پہ اتنے زیادہ یعنی کرپٹ لوگ تھے نا, انگلی رکھ لی اس آیت کے اوپر جہاں پہ یہ رجم کی سزا تھی, تو اور آس پاس سے سب پڑھتے جا رہے ہیں, وہ نہیں پڑھ رہا. پھر حضرت عبداللہ بن سلام سمجھ گئے, فرمایا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ, ہاتھ ہٹایا تو یہ رجم کی سنسار کرنے کی جو پتھر مار مار کے مارنے کی جو آیت تھی وہ موجود تھی, اب تو کیا کرتے پھر وہ. تو یہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو, اگر تو وہ فیصلہ دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کا ہے تو لے لینا, اور اگر نہیں دیتے تو پھر چھوڑ دینا. یعنی اس لیے نہیں آتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے, کوئی حق جاننے کے لیے, اس لیے آتے تھے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہاں سے مل جائے, ہماری کتاب میں تو بڑا سخت ہے حکم, تو اسلام سنا ہے کہ بڑا ہی इस मामले के अंदर इस्लाम हमारे से, यानी इस्लाम के अहकामात बहुत सारे इजी हैं इनके मुकाबले में, बहुत सारे। तो इनको ये बात पता थी तो कहते थे चलो उनके पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई ऐसा बता देंगे तो फिर ले लेंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला दे दिया तो फिर उसके बाद उनको संसार कर दिया गया। और अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा वो जानी इस औरत को पत्थरों से बचाने के लिए उसके आड़े आ जाता था। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है। तो उनको ये सजा दी गई। इसी तरह एक और भी बात इस सिलसिले में आती है, और वो ये है कि जो दूसरा वाक्य है कि यहूद का एक कबीला अपने आप को दूसरे कबीले से ज्यादा मुअज्जज समझता था। कौन सा था कबीला? वो बनू नजीर का कबीला, जो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते थे कि हम ज्यादा बेहतर हैं। यानी अपने अंदर भी उनके अंदर ये चीज थी कि हम दूसरे से, बनू कुरैजा से हम ज्यादा मजबूत हैं, उनके पास ज्यादा ताकत थी, तो वो अपने आप को ज्यादा समझते थे कि हम सुपीरियर हैं। यानी अपने अंदर भी इनके अंदर ये चीज है। और इसी मुताबिक वो अपने मकतूल की दियत 100 वसक और दूसरे कबीले के मकतूल की 50 वसक मुकर्रर कर रखी थी उन्होंने। यानी अगर आपने हमारा मारा तो आपको 100, यानी हमने आपका मार दिया तो हम 100 आपको देंगे वसक दियत। और दूसरे कबीले का अगर मकतूल होता, हमने आपका कोई मार दिया तो अब आपके वाले की तो इतनी अहमियत नहीं है ना जितनी हमारे वाले की है, तो हम आपको बस 50 ही देंगे। जैसे समझ लेंगे 50 रुपए आपके, 50 रुपए, और हमारे को मरेगा तो हमारा तो वैल्यूएबल ज्यादा है इसलिए 100 हो गया उसका, ऐसे एग्जाम्पल दे। तो ये तो ना इंसाफी थी इनके अंदर। तो कभी दूसरे कबीलों को जब कुछ हौसला हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं इतनी दियत दिया करेंगे। तो इसके मामले के ऊपर उनमें ऐसे था कि लड़ाई छिड़ जाएगी, तो उनके लोगों ने कहा कि चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और वहां से जाके फैसला कराते हैं। अब ये साथ बातें भी आपस में कर रहे हैं कि अगर वहां से भी हमारी मर्जी का फैसला मिल गया ना तो लेंगे, वरना तो नहीं लेंगे। हम मैंने देखे बदनीयत ही कितनी थी। और अक्सर ऐसा ही होता है, आज मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनको फैसला अपनी मर्जी का कराना है, लेकिन जिस वक्त इस्लाम में अपनी कोई खिलाफ बात जाती है तब इस्लाम की तरफ नहीं आना, तब दूसरी अदालतों की तरफ जाना है, क्योंकि वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे या वो हमारे मफाद की बात करेंगे। जैसे मसलन औरतें हैं तो वो कहेंगे भाई यहाँ की अदालत तो औरत का बड़ा साथ देती है, तो अब मैं यहाँ की अदालत में जाऊंगी। लेकिन जिस वक्त पता है कि यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा तो फिर इस्लाम का नाम लेना शुरू देना। ये हमारे इस्लाम में भी तो यही है ना, हम कितनी जल्दी कोर्ट करते हैं, और हमेशा वहां कोर्ट करते हैं जहां पे हमारा मफाद होता है या हमारे हक में बात जा रही होती है। अगर वालदैन हैं तो उनको इस्लाम तब याद आता है, वैसे नहीं अपने बच्चों की तरबियत में कोई इस्लाम, नहीं उनको नेकी की कोई तालीम देनी, ना ही उनको कोई नमाज रोजे का कहना। लेकिन जिस वक्त अपने हकूक का सल्फ हो रहे हो, बच्चे बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर जरूर कहते हैं इस्लाम में तो माँ बाप का इतना बड़ा हक है और तुम अब ये कर रहे हो। तो इस्लाम तो बाकी चीजों में भी बहुत कुछ कहता है, उस मामले में तो आप बच्चों को कभी नहीं कहते, उस मामले में तो नहीं आप रोकते कि बेटा इस्लाम बेहयाई से भी रोकता है, बेटा इस्लाम झूठ बोलने से भी रोकता है, बेटा इस्लाम ये गलत चीजें करने से भी रोकता है। नहीं, लेकिन इस्लाम कब याद आता है? जिस वक्त हमारा अपना मफाद होता है। यहूदियों का भी तो यही था, वो जब उनकी अपनी ख्वाहिश जहां से पूरी हो रही है ना, जहां पे अपनी मर्जी है, तो अब वहां पे कहना कि चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, लेकिन वो भी अगर हमारी मर्जी का देंगे फैसला तो ही हम मानेंगे। हमें भी जब हमारी मर्जी पता चल रही थी कि हमारी साइड लेगा इस्लाम, इस वक्त मैं इस वक्त उस रोल में हूं जहां पे इस्लाम मुझे कहेगा कि हाँ भाई इस वक्त इनका हक बनता है या इनके ऊपर अच्छा होना चाहिए या इनके साथ भलाई होनी चाहिए, तो तब बहुत जल्दी इस्लाम हमें याद आता है। लेकिन बाकी सारे मामलों में इस्लाम कभी नहीं याद आता। अगर हम बड़े हैं तो तब इस्लाम याद आएगा, देखा इस्लाम में बड़ों की कितना बड़ा एहतराम है, लेकिन दूसरी तरफ में इस्लाम कहाँ गया? दूसरी बातों में फिर इस्लाम किधर है? उसमें पूछना ही नहीं इस्लाम के कुछ और भी कहता है कि नहीं कहता। اللہ اکبر. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فتنے کا ارادہ کر لے, یعنی جس کو بھٹکانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا, فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو پھر نہیں, ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے کچھ بھی, تو تم اس کے کچھ بھی مالک نہیں ہو سکتے اب, یعنی تم اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں پھر بچا سکتے, جس کے ساتھ اللہ ہی فیصلہ کر دے کہ اب اس کو میں نے گمراہ کر دینا, اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے, اللہ کا ارادہ کس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کی چیز اپنانا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کو پسے پشت ڈال کے اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں, دین کو پیچھے کرتے ہیں, تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے پھر یہی ارادہ کر لیا, جنہوں نے خود چوز کیا اس کو. تو اب آپ ان کو نہیں بچا سکتے, تو جب لوگ خود ہی بہکنا چاہیں, دیکھیں نا, ہمیں, ہم سب کو پتا ہے نا کہ ٹروتھ کیا ہے, حق کیا ہے, اسلام صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین آیا ہوا, لیکن پھر بھی ہم کس چیز کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں, پرائیورٹی بنانا چاہتے ہیں اپنی خواہش کو نا, تو ہم نے خود چوز کیا نا, اسلام نے تو نہیں ہمیں یہ کہا, زبردستی تو اللہ نے نہیں کچھ کیا ہمارے ساتھ, ہم نے چوز کیا اپنے لیے, تو پھر اللہ بھی ایسے بندے کو ایسے ہی راستے پہ لگا دیتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, اللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں اللہ ارادہ رکھتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے, پھر اللہ بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا جو ایسے کام کرتے, ان کے دلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی, پھر دل کا پاک کرنا کیا ہوتا ہے, دل صاف ہو جانا, کلینز ہو جانا, دل نیکی کے راستے کے اوپر گامزن ہو جانا, اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا. لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے, اور آپ دیکھ لیں منافقین کے لیے کتنی رسوائی دنیا میں بھی ہوئی, آج تک کوئی بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, جو انہوں نے کام کیے کوئی ان کے نام اس طرح سے نہیں لیے جاتے جیسے کہ صحابہ, دوسرے صحابہ کرام کے نام لیے جاتے, رئیس المنافقین کو برا ہی سمجھا جاتا ہے, اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں آتا, جہاں پہ بھی اس کا ذکر آتا ہے اس کی ایک ذلت ہے وہاں. تو زندگی تو گزر گئی نا, انہوں نے اپنے سوچے کہ ہمارے اس کے اندر فائدے ہیں, ہاں مگر وہ 60 70 80 چلو بہت ہو گیا, 100 سال کی زندگی ہوئی ہوگی, وہ گزر گئی نا, لیکن آج ان کے لیے کیا ہے اور رہتی دنیا تک ان کے لیے کیا ہے, رسوائی ذلت, فی الآخرت عذاب نظیم, اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہود کے لیے بھی کیا ہوا, وہ جلا وطن کر دیے گئے تھے, ایکسپیل کر دیے گئے تھے مدینہ سے, کتنی رسوائی ہوئی ان کی, بنو قریظہ کے تو قتل بھی ہوئے تھے. تو انسان سوچتا ہے نا اس دنیا کے اندر, میں یہاں پہ مخبریاں کروں, میں اپنا مفاد لے لوں, میں اپنی بات کو آگے رکھ لوں, دین کو پیچھے کر لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ بھی گیا تو کون اس کی پرواہ کرے, ہوتا ہوگا حدیث ہوگی, ہمیں کیا اس سے, وہ فیصلے وہ بھی کرانے آتے تھے, آج ہم بھی فیصلے کرانے کے لیے جب دیکھتے ہیں نا کہ سنت میں حدیث میں ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہے تو وہ نہیں ہم نے ماننا, نہیں تب ہم نے اپنی خواہش کو ہی آگے رکھنا, جا جا کے اگر ہماری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں مسلمانوں کی بجائے, وہ ہمیں پسند آتے ہیں, مسلمانوں کا تو ہر کام ہی برا لگتا ہے, کافروں کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے, ان کے ہم پیالہ ہم نوالا, ان کے ساتھ ہمدردیاں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, ان کے ساتھ دلی دوستیاں, ان کے ساتھ مفادات, اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا, تو یہ وہ سارے کام ہیں جن سے دنیا میں بھی رسوائی ہے, یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, آخرت میں تو پوچھو نہیں ہے نا. تو بہت لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں, بہت عقل مند بنتے ہیں, وہ سوچتے ہیں آج کا میں نے فائدہ کما لیا نا تو بس, ان کا کوئی پرابلم کیا تھا, ان دونوں گروہوں کا پرابلم کیا تھا, دونوں کی سائیکی سیم تھی, منافقین کا کیا پرابلم تھا, دنیا جاتی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی, ہائے उधर हो जाओ, जिधर को जिस करवट ऊंट बैठता है उधर को हो जाओ। मुसलमान भी नाम के मुसलमान क्यों हुए थे? इसीलिए ना कि हम हमारी जान माल बच जाए इन मुसलमानों से, ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये इस वक्त राइजिंग स्टार है, ये इस वक्त इनका बड़ा नाम बन रहा है, बदर हो गई भी थी ये, तो बड़े मतलब लग रहा है कि यही आगे जाएंगे, तो इनके साथ लग जाओ। जैसे आज भी दुनिया में वो लोग जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, राइजिंग स्टार्स होते हैं, उनके साथ लोग खामखा लग जाते हैं, वो इनके साथ लग गए थे। दिल में तो ईमान नहीं था, उन्होंने सोचा इससे हमारा फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा हुआ? इसी तरह यहूदी, उनको ये था कि हाय अब हम इनको मान लें, अगर तो हमारी अपनी कुर्सियों का क्या होगा, हमारी चौधराहटों का क्या होगा, हम इतने बड़े इल्म वाले समझ जाते हैं, हमारे पास लोग आएंगे नहीं कुछ पूछने के लिए, हमारा क्या बनेगा? अब लिखो, ये दुनिया तो खत्म हो गई, उनकी भी खत्म हो गई जिन्होंने कुर्बानियां दी इस दीन के लिए, जिन्होंने दिन और रात अपनी जिंदगी को लगा दिया, जिन्होंने किसी चीज की भी परवाह ना की, सभी कुछ कुर्बान कर दिया, उनके भी वो भी खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए, लेकिन वो हमेशा के लिए सुरखरू हो गए और ये हमेशा के लिए जलील और ख्वार हो गए। तो प्यारी बहनों, बात ये है समझने की इसके अंदर, ये देखो इस दुनिया के मफाद को देख के ना चलना, बाज दफा वक्ती फायदे हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अपील करते हैं, लेकिन वो वक्ती होते हैं। यहां से वहां जाके उनको बताऊंगी, वो मेरे से खुश हो जाएंगे। ये मुखबरियां इसीलिए करते थे ना, वो खुश हो जाए, वो उनको लगे कि हम उनके साथ हैं, तो ना वो साथ रहे ना वो साथ रहे, कोई भी ना साथ रहा, और इंसान अकेला ही फिर जमीन के नीचे चला जाता। तो छोटे छोटे इन हकीर फायदों के लिए अपना ईमान ना बेचें, अपना अमल खराब ना करें, अल्लाह को मुंह दिखाना है। सम्माउन लिल कदिब अक्कालून लिल सुहत, क्या करते थे फिर यहूदी, बहुत ज्यादा सुनने वाले झूठ के, वो ही उनकी बात दोबारा बताई गई, जासूसियां करना, झूठ पे मबनी जो कुछ कहा जा रहा है बस उसके ऊपर यकीन करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध के बयान करना, लोगों को आपकी बातें ऐसी बताना, नहीं इनका तो कोई जिक्र नहीं है हमारी किताबों में, नहीं ये तो इन्हें, और बस झूठ बताना, जबकि वो जानते थे सब झूठ। झूठ क्या चीज होती है, झूठ की डेफिनेशन क्या है, खिलाफे वाक्या बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपसे पूछा गया क्या मुसलमान बुजदिल हो सकता है, फरमाया हाँ। पूछा गया मुसलमान बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है, फरमाया हाँ। पूछा गया मुसलमान झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता। और झूठ किन का तरीका था, इन यहूदियों का और मुनाफिकीन का। आज हम दुनिया में झूठ के नाम से मशहूर है, झूठे लोग, फ्रॉड लोग, करप्ट लोग, झूठ है ना ये सारा। ये जब धोखा भी आप किसी को देते हैं, चीट करते हैं, तो वो भी झूठ है, वो झूठ है। और हमने इसमें कितना नाम पैदा किया हुआ, जाली चीजें झूठ हैं, जाली कागजात झूठ हैं, जाली इंफॉर्मेशन झूठ है, कितना झूठ है हमारी जिंदगियों के अंदर। वो लोग सम्माउन अलिल कज़िब थे, अक्कालून अलिल सहत, बहुत ज्यादा हराम खाने वाले। और हराम में मैंने जैसे आपको बताया, मुफसिरीन ने तफसीर में लिखा है कि सहत से मुराद खास तौर पे यहां पे रिश्वत है, वैसे तो हर एक ही हराम माल उसको सहत कहते हैं, लेकिन रिश्वत, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि ये जब इनसे लोग पूछने आते थे कोई फतवे या कोई फैसले कराने आते थे, तो रिश्वत लेके उनके मुताबिक फैसला करते थे, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अब बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे हैं, उनकी औरतों ने कोई गलत काम किया, उनके मर्दों ने किया, तो उनसे पैसे लेके काम कर देते थे। और रिश्वत सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिश्वत ओहदों की भी होती है, रिश्वत और मफादात की भी होती है। जब इंसान को कोई और वफा दे रहे हैं, आपको घर दे देंगे, आपको वीजा दे देंगे, आपको ग्रीन कार्ड करा देंगे, आपको ये कर देंगे, ये भी सब रिश्वत ही है, जिससे वो अपना दीन बेच देते थे, बदल के बातें बता देते थे लोगों को। तो और आवाम भी वैसा ही दीन चाहती थी, जो रिश्वत तो देख के बदलवा लिया जाए, فتوے اپنے مطابق کروا لیے جائیں. فَإِن جَاءُكَ, پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں, اے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کس کے لیے, فَحْكُم بَيْن, یعنی فیصلے کرانے کے لیے, فَحْكُم بَيْنَهُمْ, تو فیصلہ کرو ان کے درمیان, او اعرض عنہم, یا اعراض کر لو ان سے. اگر وہ اپنے مقدمے لائیں آپ کے پاس کہ آپ ہمارے فیصلے کریں, تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ فیصلہ تھوڑی کرانا چاہتے ہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق کی کوئی بات کہہ دیں. تو آپ کی مرضی ہے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دے دی کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں, چاہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں کرنا چاہتا. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, اگر آپ ان سے اعراض بھی برت لیں گے تو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر میں ان کو کہوں گا کہ میں نے نہیں تمہارا فیصلہ کرنا, تو یہ کہیں میرے خلاف ہی باتیں نہ شروع کر دیں, میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے, مجھے بدنام کریں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے نقصان پہنچانا چاہیں گے. سازشوں میں تو بہت تیز تھے یہودی. تو اے نبی اس بات کی نہ پرواہ کریے گا, فلاں یہ درو کا شیرا, یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے, کچھ بھی نہیں. وہ ان حکم تھا فحکم بینہم بالقسط, لیکن اگر آپ چوز کریں کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے, تو یاد رکھیں فیصلہ ہوگا تو انصاف کے ساتھ ہی ہوگا, انصاف کے علاوہ نہیں ہوگا. تو پھر آپ نے انصاف ہی کرنا انکنڈیشنل, چاہے آپ کو کوئی برا کہیں, وہ چاہے مذاق اڑائیں, چاہے تعلقات خراب ہو جائیں. زیادہ یہی ڈر ہوتا ہے نا انصاف کی بات کرنے میں کہ جی ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے, پھر ہم سے بات نہیں یہ کرے گی. نہیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کی بنیاد پر. اور یہ ہم سب کے لیے کہ انصاف زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے, چاہے ہم اپنی, ہم ٹھیک ہے ہم عدالتوں میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم کوئی جج تو ہیں نہیں کہ جنہوں نے کوئی فیصلے لوگوں کو سنانے, لیکن دیکھیں عدالتوں میں ہی تو نہیں فیصلے ہوتے, ہمارے ایوری ڈے ہم فیصلے کرتے ہیں, اپنے خاندانوں میں فیصلے کرتے ہیں, اپنے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں, اپنے کام کاروباروں میں فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ عدل انصاف کے ساتھ ہی ہو. کسی نوکری پہ, کسی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو 10 فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن ہونا انصاف چاہیے. چاہے دوسری طرف ایک طرف مسلمان ہے, اس نے زیادتی کی ہے, اس کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے, لیکن ہوگا انصاف کہ دنیا میں ہم سمجھے جائیں یہ انصاف والے لوگ ہیں. دنیا میں ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہیں مسلمان لوگ, یہ انصاف کے علاوہ نہیں بات کرتے. لیکن ہماری کیا پہچان ہے, جدھر مفاد دیکھتے ہیں ادھر ہی لڑک جاتے ہیں, جدھر اپنا فائدہ آتا ہے ادھر کی بات شروع کر دیتے ہیں, جدھر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کوئی, ہمیں کوئی چیز حاصل ہو جائے گی یا ہم کوئی نقصان سے بچ سکتے ہیں, اس کے مطابق ہی ہم بولتے ہیں, ہماری بول چال تو ویسی ہی ہوتی ہے. انصاف کو تو نہیں ہم دیکھتے کہ انصاف کیا ہے, حالانکہ ان اللہ یحب المقسطین, اگر اللہ کے محبوب بننا ہے نا, چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تو انصاف کرنے والے بنو, کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اپنے بچوں میں بھی انصاف کیجیے, انصاف کریں. چاہے ایک بچہ آپ کی بہت کوئی زیادہ آپ کی کہنا سنتا ہے, اور ایک بچہ نے کوئی خدمت نہیں کی, لیکن انصاف کریں کہ جب وراثت بٹے انصاف ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم انصاف کا ہے. جب بچوں کو کوئی چیز لے کے دے رہے ہیں, انصاف کیجیے اس کے اندر. میکے اور سسرال کی بات ہے, انصاف کیجیے. لیکن ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے انصاف سے, کیونکہ انصاف ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا آیتیں پڑھی کہ چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف جائے بات, سورہ نساء میں یہی پڑھا تھا نا, چاہے اپنی ذات کے خلاف, چاہے اپنے والدین کے خلاف, اور چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات جا رہی ہو, لیکن تم نے بات قسط کی کرنی ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین. ایک ایسے انسان کو جو اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے, اس کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے مقسطین کے ساتھ, میں انصاف کی بات کروں گی. اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. خلیفہ ہشام بن عبد الملک جو تھا, حج کے لیے مکہ آیا, تو اس نے کہا کہ کوئی صحابی رسول اگر زندہ ہے تو ان سے مجھے ملواؤ. لوگوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں ہے زندہ. لگا اچھا کوئی تابعی صحیح. تو طاؤس بن کیسان یمانی رحمت اللہ علیہ, وہ مکہ میں موجود تھے, تابعی ہیں. لوگ گئے اور ان کو لے آئے خلیفہ کے پاس. جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے جوتے قالین کے کنارے سے لگا کے اتارے اور کہنے لگے, السلام علیکم یا ہشام, اور اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے. شام کے چہرے پہ تو غصہ تھا کیونکہ امیر المومنین نے انہوں نے مجھے کہا اور دوسرے مجھے حشام کہا ہے. مجھے میری کنیت سے بھی کہنا جو ہوتا تھا نا وہ بھی ایک بڑا سمجھا جاتا تھا کہ کنیت سے پکارا جا رہا ہے, تو انہوں نے مجھے حشام کہہ کے پکار دیا. تو بڑا اس کو غصہ آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ جب اس نے کہا نا حشام تم کیسے ہو, تو اور بھی زیادہ آپے سے باہر ہو گیا. کہنے لگا آپ کو ایسا کرنے کی جرت کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا پہلی غلطی آپ نے یہ کی, یہ قالین کے کنارے سے لگا کے اپنے جوتے اتارے, یہ مطلب ادب کے خلاف ہے. دوسری آپ نے یہ غلطی کی, مجھے امیر المومنین کہہ کے نہیں سلام کیا اور مجھے میری کنیت سے پکارنے کی بجائے میرا نام لے رہے, اور آپ نے کہا شام تم کیسے ہو, بھلا حکمرانوں کو ایسے پکارا جاتا ہے؟ تو طاؤس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے تمہارے پاس داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتارے, مگر سنو میں تو ہر روز 5 دفعہ اپنے رب کے گھر کے دروازے پہ جوتے اتارتا ہوں اور وہ تو مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اور تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کیا, تو بات یہ ہے کہ تمام لوگ تو تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں, نہ ہی تمام مسلمان تمہیں امیر المومنین مانتے ہیں, لہٰذا اس میں جھوٹ کا احتمال ہوتا اگر میں تمہیں امیر المومنین کہتا, تو میں تمہیں کیوں پھر امیر المومنین کہوں؟ میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور تم نے کہا میں نے تمہیں کنیت سے کیوں نہیں پکارا, نام لے کے کیوں پکارا؟ تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو, نبیوں کو مخاطب کیا قرآن میں, یا داؤد یا یحییٰ یا موسیٰ, تو اپنے بدترین دشمن کو کنیت سے پکارا ہے, تبت یدا ابی لہب. تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں کنیت سے کیوں نہیں پکارا, نام سے پکارا, اور اس میں تمہاری بےعزتی کی ہے, تو اس میں تو بےعزتی نہیں ہے. تو اب شام تو لاجواب ہو گیا, غصہ ضبط کرنے کے کچھ دیر بعد بولا آپ مجھے کچھ نصیحت کریں پھر. تو طاؤس نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو فرماتے سنا کہ جہنم میں پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح لمبے تڑنگے سانپ ہوں گے اور خچروں کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے, یعنی پہاڑوں میں, جہنم میں جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں کی طرح سانپ ہوں گے, اتنے لمبے ہوں گے, اور جو یہ خچر ہوتے نا اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو اس کو ڈسیں گے جو عدل و انصاف نہیں کرتا اپنی رایا میں. دیکھیں ذرا, اور ظاہر ہے حضرت علی سے سنی ہے, تو حضرت علی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی جو فرمائی ان کو. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ دیکھیں وہ اتنی سی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور حق بیان کرنے میں انہوں نے کوئی شرماہٹ نہیں اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی, اور یہ بات بیان کی کہ جو لوگ انصاف نہ کریں ان کو ایسے سانپ اور بچھو ڈسیں گے جہنم کے اندر. انصاف زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر جگہ پہ, جہاں پہ بھی ہم ہیں, مطلب ہماری چاہے آپ آفس میں ہیں, چاہے آپ گھر میں ہیں, چاہے آپ کہیں اپنی دوستوں میں ہیں, آپ ایک طرف آپ کے وہ ہیں جو کہ آپ کے پیارے ہیں یا آپ کی دوست ہیں, یا اور آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہائے اگر میں نے اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی نا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو میں کیا کروں. نہیں, لیکن آپ نے یہ سمجھنا کہ انصاف میری زندگی کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, انصاف کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. یہ کس طرح آپ کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں, عجیب ہی لوگ ہیں. مطلب ایک وَكَيْفَ کے مطلب یہ نہیں کہ سوال پوچھا جا رہا ہے, مطلب ایک تعجب کی بات ہے, ایک تنزیہ بات ہے کہ کس طرح یہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ فیصلہ کرانے کے لیے بھی, جبکہ ان کے پاس تو خود تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آلریڈی موجود ہے, تو یہ کس منہ سے آپ کے پاس, یعنی کیوں یہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ اصل میں کیا بات ہے کہ اپنی خواہش نا, حالانکہ وہ تو تورات ان کے پاس ہے, تورات پہ وہ ایمان رکھتے ہیں, تورات ہی ان کی بک ہے, اس کے اندر فیصلے لکھے ہوئے ہیں, تو بھائی تم اس میں ہی دیکھ لو, لیکن اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہش, کیا کریں وہ فیصلہ جو قبول نہیں ہے. تو یہ کس طرح آپ کو منصف بناتے ہیں, آپ کو نبی تو مانتے نہیں ہیں اور منصف بنانے آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے اندر فیصلے کریں. ثم یتولون من بعد ذلک, اس کے بعد موڑ کے چل پڑتے کہ ان کو فیصلہ بھی منظور نہیں ہوتا. फैसला उनकी मर्जी का जो नहीं हुआ ना। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, और नहीं ये लोग ईमान लाने वाले। तो जो लोग भी ईमान का दावा करें उनके लिए तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल फैसला करें और वो उसे मुंह मोड़ जाए। वो तो ये नहीं कर सकते कि किताब को छोड़ के और फिर वो कहें कि हम कहीं और से जाके फैसले कराते हैं, फलां का कॉल क्या है, फलां की बात क्या है, उससे पूछ लो उसका फतवा क्या है, जबकि पता है कि कुरान में ये बात आ चुकी है, फिर भी जाके पूछते हैं। हाँ कुरान में तो है, ठीक है हदीस में तो है, लेकिन आप बताएं आप क्या कहती हैं, अपने इमामों से जाके पूछते हैं, आप बताएं ना फिर क्यों, या तुम्हारे पास कुरान नहीं है और पता भी है कि कुरान में ये बात है, तो अल्लाह की किताब किसी कौम में मौजूद हो इसके बावजूद वो उससे फैसले ना ले और इधर उधर जाए। वो तो ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे लेकिन आपको रसूल मान के थोड़ी आते थे, ये नहीं थे कि वो आपको रसूल मान के आ रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े हैं, मतलब अब मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए वो तो चलो सही समझ आती है, उनका तो कोई बनता ही नहीं था, लेकिन वो क्यों आते थे, इसलिए कि वो अपनी ही बात को अपनी ही किताब को नहीं मान रहे, अपनी किताब पे फिर क्या ईमान रहा कि अगर उसको छोड़ के इंसान, जैसे आज के वक्त में कुरान और हदीस को छोड़ के कोई इंसान किसी के फतवे पूछने चल पड़े। हाँ होती होगी कुरान हदीस में बात, लेकिन आप फतवा बताएं, आप कैसे फतवा दे सकते हैं, नहीं, लेकिन आज के दौर में फिर क्या, ओ भैया आज का दौर हो या काल का दौर हो, कैसे आप किसी से सवाल भी कैसे कर सकते हैं, मतलब वो चाहते हैं ना इसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है आज के दौर में, आप कुछ आप ही कोई गुंजाइश निकाल दें, यानी एक तरफ कुरान और हदीस की बात और एक तरफ किसी आम इंसान को आप कह रहे हैं कि आप कोई गुंजाइश निकाल दें, चाहे वो कोई भी आलिम है, कोई आपकी मस्जिद का इमाम है, जब आपको पता चल गया ये बात ऐसे है फिर पूछना ही नहीं बनता। तो मैंने जैसे आपको कहा ना, आप सरसर हमने उस वक्त ही फरमा दिया था ना कि तुम लोग एक एक चीज में कदम ब बलिश्त इनके पीछे जाओगे, जो जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करोगे, ये उम्मत आज यही कर रही है। आपको भी हैरत नहीं हो रही कि वो देखे कि यहूदी हैं तौरात उनके पास है, तौरात पे ईमान रखते हैं, मुसलमान होना नहीं चाहते, आप सरसर हमसे आके पूछ रहे हैं आप बताएं हमारे दरमियान फैसला करें, तो उस बात पे कहा जा रहा है। तो ये तो ईमान वाले नहीं, ये तो अपनी किताब पे भी ईमान नहीं रखने वाले, इनका अपनी किताब पे भी फिर क्या ईमान हुआ जो उसको एक साइड पे रखे में, इन्ना अनजलना तौराता फीहा हुदा व नूर, बेशक हमने नाजिल की तौरात इसमें हिदायत भी है और नूर भी, यानी अपने जमाने के लिए, आज के लिए नहीं कि आज को तौरात ले आए, अपने जमाने में तौरात भी अल्लाह ने ही नाजिल की है, वो कहीं और यहूदी कहीं से लेकर नहीं आए, अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल हुई है, पहली तो ये बात समझ ले, और उसमें भी क्या था, हिदायत भी थी नूर भी था। और इस कुरान के बारे में भी आपको क्या बताया, जब सूरह निसा खत्म हो रही थी आपको बताया था ना इस कुरान को भी नूर कहा गया, और शुरू से आप देख लें हुदन लिल मुत्तकीन जब सूरह बकरा में आपने पढ़ गया तो ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तो कुरान भी हिदायत और नूर है, ये भी हिदायत और नूर थी, और हिदायत क्या मतलब, यानी रहनुमाई करती, राह दिखाती, और नूर यानी नूर किस लिए चाहिए होता है, लाइट रोशनी किस लिए चाहिए होती है, जब कोई अंधेरों में होता है तो उसको नूर की जरूरत होती है कि उस नूर की रोशनी में वो चल सके। तो ये कैसे किताबें, ये आगे आपको पढ़ेंगे कि इंजील के बारे में भी यही कहा गया कि इंजील भी नूर थी, तो ये किताबें कैसे नूर है, यानी इंसान को जो अंधेरे हैं ना, अंधेरे किन किन किस्म के होते हैं ये भी बात समझे, उनसे उन अंधेरों से निकालती है, कौन से अंधेरों से, मसलन जहालत के अंधेरे, इसी तरह कंफ्यूजन्स, इसी तरह डाउट्स, शकों को शुभात, पता नहीं ऐसे है कि नहीं है क्या नहीं है, और जहालत जिस वक्त इंसान को पता ही नहीं है, तो ये नूर है, ये आपको रोशनी में ले आती है, यानी वो चीज वाजे करके दिखा देती है, जो शकों को शुभात है वो भी दूर कर देती है, इसी तरह और भी अंधेरे हैं, मिसाल के तौर पर गफलत का अंधेरा होता है, गफलत का भी अंधेरा है, इंसान जब गाफिल होता है तो ये किताब जैसे कुरान है आज ये नूर है, तो ये आपको गफलत के अंधेरे से निकाल लेती है, और आप देखते हैं जब इस कुरान के साथ आप नहीं ताल्लुक रखते थे, इसको नहीं सीख रहे थे उस वक्त की जिंदगी में और अब में कुछ फर्क तो आया होगा ना, अभी तो आप छठे पारे पे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको तो लगा होगा ना कि अंधेरे जैसे छट रहे हैं, माइंड में कई चीजें थी वो कंफ्यूजन्स थी वो खत्म हो रही। तो अंधेरे से निकालने वाली उस वक्त भी कौन सी किताब थी? तौरात थी। इसी तरह कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, बिदतों के अंधेरे, ये सब अंधेरे हैं, इनसे नूर भी इंसान को ले आती है। यहकुमु फैसला करते थे, बिहा साथ इसके, किसके साथ? इस तौरात के साथ। अन्नबीयून, नबी यानी जब तौरात उतर गई ना मूसा अलैहिस्सलाम पे, उनके बाद भी बहुत सारे नबी आए, वो सारे नबी जो थे वो इस तौरात के मुताबिक फैसले करते थे। अन्नबीयून लदीना असलमू, वो नबी जो खुद भी इस्लाम लाए हुए थे। क्या मतलब? वो नबी जो खुद इस्लाम का मतलब क्या होता है? मुती हो जाना, फरमा बरदार हो जाना। वो खुद फरमा बरदार थे, यानी वो ऐसे नहीं थे कि लोगों को तो बड़े दर्स दे रहे हैं, तौरात बड़ा सिखा रहे हैं और खुद तो उसके ऊपर चलने वाले ही नहीं। ऐसे नहीं थे जैसे आज अक्सर हम लोग हैं कि दर्स तो बहुत दे देती, लेक्चर तो बहुत दे देते, लेकिन खुद का पता ही नहीं होता। तो वो ऐसे नहीं थे, वो अंबिया फैसले करते थे इन इस तौरात के मुताबिक, और वो खुद भी फरमा बरदार थे। और इससे पता चला कि ये किताब हाकिम भी है, फैसले करने वाली भी थी तौरात जो थी, मसाइल के फैसले, लोगों के झगड़ों के फैसले, कई तरह के फैसले होते हैं ना, वो सारी ये तौरात के थ्रू किया करते थे। किन के दरमियान फैसले करती थी? लिल्लदीन हादू, यहूदियों के दरमियान, उन लोगों यहूदी जो लोग थे उनके नबी उनके दरमियान फैसला किया करते थे। और नबियों की सिफत क्या थी? अल्लदीना असलम। क्योंकि ये जरा लंबी आयत है ना, तो आप इसमें लॉस ना हो जाएगा कि याकुमु बिहा, हा की जमीर किस तरफ जा रही है? तौरात की तरफ। तौरात के जरिए, तौरात के साथ फैसला करते थे कौन? अंबिया। वो कैसे अंबिया थे? अल्लदीना असलम, जो खुद भी फरमा बरदार थे। किन में फैसला करती थी? लिल्लदीना हादू, उन लोगों में जो यहूदी हुए। व रब्बानीयून वल अहबार, और रब्बानी भी और उलमा भी, वो भी फैसला करते थे इस किताब के मुताबिक। यानी अगर आप ये कहें कि कौन कौन फैसला करते थे, अगर आप यहां से देख लें, बिहन नबीयून व रब्बानीयून वल अहबार, यहकुम फैसला करते थे इसके साथ नबी भी, रब्बानी भी और अहबार भी। किन के दरमियान? यहूदियों के दरमियान। और जो नबी थे वो खुद भी फरमा बरदार थे। तो रब्बानी और अहबार कौन थे? रब्बानी रब वाले, यानी जो अहले किताब, जो यहूदियों की तरबियत करने वाले थे। और रब्बानियत के अंदर आ जाती है रूहानियत भी आ जाती है और इल्म भी आ जाती है। यानी ये वो लोग थे जो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग थे, और अहबार भी जो उलमा थे उनके। तो अब उलमा उनके, यानी जिनके पास इल्म था, रब्बानी जिनके पास इल्म भी है और उनके दिलों में, जिसको कहते हैं कि इंसानियत भी हो या रहम भी हो या दिल नरम हो, तो उनका जिक्र पहले आया और उलमा का बाद में आया। क्योंकि अगर इल्म है लेकिन रूहानियत नहीं है ना, तो वो इल्म भी बहुत खुश्क इल्म हो जाता है, और बाज दफा इंसान के अंदर बड़ी सख्ती पैदा हो जाती है। तो रूहानियत बहुत जरूरी है। बास लोगों के पास इल्म इतना नहीं होता, लेकिन रूहानियत में बहुत आगे होते हैं और दिल उनके बहुत नरम होते हैं। तो ये भी और उलमा भी, इनके दरमियान, लोगों के इन यहूदियों के दरमियान फैसला किया करते थे इस किताब के जरिए। यानी ये लोग तो आज ये किताब को छोड़ के तो चले हुए हैं कि चलो हम जाके उनसे फैसला कराते हैं, जबकि इनसे पहले इनके नबी भी इसी किताब से फैसला करते थे, और इनके रब्बानी भी और इनके अहबार भी। बिमस्तफिदू मिन किताबिल्लाह, बवजह इसके जो वो निगरान ठहराए गए अल्लाह की किताब के। इसका मतलब क्या है कि बवजह इसके जो वो निगरान ठहराए गए, यानी जो इस किताब की हिफाजत करने के लिए ठहराए गए थे। पहले जो किताबें थीं उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी नहीं ली हुई थी, ठीक है, वो जिम्मेदारी लोगों के ऊपर ही थी, सही है ना? वो तो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, यानी ये किताब उन्होंने तौरात में कोई रद्दो बदल नहीं किया, उन्होंने इसकी हिफाजत की, इस किताब की हिफाजत का हुक्म उनको दिया गया था। वी मस्तफिदु मिन किताब अल्लाह का मतलब क्या, उनको इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था, लिहाजा वो इस हुक्म के मुताबिक इसको बड़ी हिफाजत करने वाले थे। यानी कोई उन्होंने चेंजेस इस तरह से नहीं की जैसे बाद के यहूदियों ने कर ली। उस जमाने में वो लोग तौरात को बगैर चेंज किए हुए उसके मुताबिक फैसले करते थे। वकानु अलैहि शुहदा, और वो इसके ऊपर गवाह भी थे। गवाह किस बात के थे कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, ये तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, वो इसकी गवाही भी देते थे। ठीक है, वो बड़ी यानी जिम्मेदारी के साथ ये काम करते थे, वो इसकी हिफाजत भी करते थे। और हिफाजत में सिर्फ फिजिकली हिफाजत करना नहीं होता कि भाई कोई पकड़ के बैठे में या कुछ है, हिफाजत का मतलब है कि इसके माने में कोई चेंज नहीं करना, इसकी कोई चीज आगे पीछे ना हो जाए। ये नहीं कि भाई वो कोई उसको चेंज करके कुछ और ना लिख ले, बल्कि खुद जैसी उतरी वैसे ही मुताबिक उसको लोगों को पहुंचाने के लिए कोशिश करते थे, और इस पर खुद गवाह थे। और गवाही सिर्फ बोल के नहीं होती कि हाँ ये अल्लाह की किताब है तो अब ये बोल दिया, ये तो एक चलो गवाही हो गई ना जुबान से, एक जिंदगी भी तो इंसान की गवाही देती है कि ये वाकई हम किताब वाले हैं, हमारे पास किताब आई हुई है। पता चलना चाहिए लोगों को कि ये किताब वाले लोग हैं, ये हामिल किताब है, हामिल कुरान का पता चलना चाहिए या नहीं? बताइए, आप भी तो किताब वाले हैं और मैं भी किताब वाली हूँ, हम कौन सी किताब वाले हैं? हम हामिल कुरान हैं। तो जो कुरान सीखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ये सब हामिल कुरान हैं। और हामिल कुरान को अल्लाह ताला ने अपने अहल में से फरमाया कि वो अहलुल्लाह हैं। अहलुल्लाह कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने पूछा कौन है अहलुल्लाह, तो आपने फरमाया हामिल कुरान, कुरान वाले। तो जिंदगियां भी तो जिंदगी डिपिक्ट करनी, जिंदगी से जाहिर होना चाहिए कि वाकई भाई ये कुरान वाले हैं, ये अलग से नजर आते हैं क्योंकि ये कुरान वाले लोग हैं। बातों से पता चलना चाहिए, नहीं जी वाकई एक तो ये तो कुरान वाले लोग हैं ना, इनकी बातें तो वो नहीं है जो दूसरों की हैं। पहनने ओढ़ने से पता चलना चाहिए कुरान वाले हैं भाई, लोगों को नजर आ जाए ये कुरान वाले हैं। तो सिर्फ जुबानी कलामी किताब वाले ना हो, किताब नजर आए किरदार में, अखलाक में, जुबान में। अगर जुबानें तड़ तड़ कर रही हूँ, कैंची की तरह चल रही हूँ, जुबानों से पता नहीं क्या खुराफात निकल रही हूँ, तो ये क्या हामिल कुरान है? ये क्या कुरान वालों की, ये तो निस्बत लग ही नहीं रही कि कुरान के साथ इसकी हो सकती है। तो गवाह बनना, ये शहादत देना अपनी जिंदगी के साथ, ये बहुत बड़ा काम है। और ये सब ये करते थे जो रब्बानी थे, जो अहबार थे, जो अंबिया थे, वो खुद गवाह थे, उनकी जिंदगियां गवाह थी कि ये किताब के मुहाफिज हैं, ये किताब वाले हैं। तो हम भी अपनी जिंदगियों में कोशिश करें कि हम भी किताब के गवाह बने, हम भी इसके गवाही हमारी जिंदगी दे कि हम तक किताब पहुंची भी है। ये तो नहीं कि हम दीवारों की तरह या पत्थरों की तरह जिनसे किताब टकरा टकरा के और चली गई और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये देखें कि कैसी उनको प्यारी किताब मिली ना, उनके पास भी हुदन और नूर था, लेकिन इनका हाल क्या हो गया? ऐसा नहीं था इनके पास नहीं कोई किताब आई थी, इनके पास भी आई थी, और कोई कम किताब नहीं इनको दी गई थी, इनको भी वो किताब दी गई थी जो हिदायत और नूर थी। तब भी इनके हालात कितने बिगड़ गए, किस नहज पे ये पहुंच गए। अल्लाह अकबर। और वाकई ये किताब इंसान को जिस तरह अंधेरों से निकालती है, जिस तरह हिदायत का रास्ता दिखाती है, जिस तरह जैसे उंगली पकड़ के कोई चलाता है ना जिंदगी में, इस तरह ये किताब चलाती है। फला तख्शवुन्नास वख्शूनी। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया, कि ए यहूदे मदीना, अब उनको उनकी ना तारीख बताई गई, देखो तुम्हारे बड़े तो ये करते थे तो तुम क्या कर रहे हो, फला तख्शबुन नास वख्शौनी, लोगों से मत डरो मुझसे डरो। ये क्यों कहा गया, एकदम ये बात क्यों आ गई, इसलिए कि ये जो सारे अपनी किताब को एक तरफ रख के और फिर मनमाने फैसले करना, तहरीफें करना, रिश्वतें ले लेके उनको फतवे देना, ये या लोगों की मनमानी बातें करना, ये सब क्यों था, या इस अपनी किताब के अहकामात को पीछे डालना क्यों था, लोगों का डर, इतने बड़े बड़े लोग हैं फिर हमें कोई नुकसान देंगे, फिर हमारे खिलाफ होंगे, फिर हमें इस सीट से ही ना हटा दें जिसपे हम हैं। हमारे लिए कितने ज्यादा सबक है ना, एक्चुअली हम उनका नहीं पढ़ रहे, हम आईना देखें तो अपना आप नजर आ रहा है इसमें। इसलिए ये कह के इन आयतों को ना छोड़ दिया करें, ना तो उन यहूदियों की बातें आ रही हैं, आज के सबक में तो कुछ भी नहीं था, सभी यहूदियों की बातें थी, नहीं फला तख्शौनास, क्योंकि किताब से सबसे ज्यादा इंसान को अमल करने से, किताब पे अमल करने से सबसे ज्यादा कौन सी चीज रोकती है, वो है लोगों का डर। आज भी आप देखें हमें भी क्या डर होता है, कभी दिल भी चाहता है और करने को भी तैयार होते हैं, बस लोगों का खौफ ऐसा पता नहीं क्यों दिल के अंदर होता है, या मैं कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा तो मेरी दोस्तें छोड़ देंगी, तो मेरा फलाना होगा, तो मेरा फ्रेंड सर्कल का क्या बनेगा, तो फिर कोई मुझे इन्वाइट नहीं करेगा, तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, तो कितना ज्यादा ये हमारे, यानी इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है कि हम इसको कबूल कर लेते हैं कि हम अमल में पीछे रह जाएं, लेकिन लोगों को नहीं नाराज करना, क्या ये खौफ हमारे ऊपर है। लेकिन जब इंसान लोगों की खातिर अल्लाह को नाराज करता है ना, तो अल्लाह उन लोगों को भी उनसे नाराज कर देता है, ये होता है। और अगर आप कभी आजमा के देखिएगा इस बात को, यह हदीस है कि जब इंसान अल्लाह की रजा की खातिर लोगों को नाराज कर देता है ना, अल्लाह राजी हो जाए, लोग भरे नाराज होते हैं, तो अल्लाह ताला एक दिन उन लोगों को भी राजी कर देगा आपसे। तो कभी अल्लाह को ना नाराज करें लोगों के डर की वजह से, लोग लोग लोग, बस हमें लोगों में रहना जो है, हमने इस दुनिया में ही रहना है, क्या करें, चाहे ये गुनाह कर लेंगे हम, लेकिन बस क्या करें, फिर लोग हैं, क्या करें, फिर ये हमारा होता है ना क्वेश्चन, क्या करें फिर, अल्लाह अकबर। तो हम तो लोगों के डर की वजह से अपनी जात से भी नहीं गवाही दे पाते कि हम हामिलुल कुरान है, ये लोगों का डर है जो हमें इससे भी बाज रखता है, अल्लाह अकबर। और इस वजह से हक बात कहने से भी डरते हैं, हक बात कह दी तो फिर लोग क्या कहेंगे, हमने ये स्टेप उठा लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये मैंने बात उसको बता दी तो क्या कहेंगे, अगर मैंने उसको इस चीज से रोक दिया तो क्या कहेंगे। वला तश्तरू भी आयाती थमन कलीला, तो ना तुम बेचो मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर, ये थोड़ी कीमत है, चाहे दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए ना, वो थोड़ी है इसके मुकाबले में, थोड़ी है जो इंसान इन आयात को अल्लाह की बेच देता है, यानी अल्लाह के दीन को कुछ और करके लोगों के सामने पेश कर देना, लोगों से पैसे ले लेके, जैसे मैंने आपको कहा फतवे दे देना, चाहे पैसे ना भी लेना, लोगों की तारीफें हो गई या लोगों की तरफ से एहतराम हो गया, या लोग मेरे फैन नहीं बनेंगे फिर, तो बस मैं इस वजह से मैं, या मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं रहेगी फिर, तो ये भी सारी रिश्वतें ही हैं, ये भी सारी कीमतें ही हैं जो लेते हैं, ये बहुत थोड़ी कीमत है जिस पे तुमने बेच दी, और ये सारी थोड़ी कीमत है, चाहे सारी दुनिया भी मिल जाए, तुमने इसका सौदा किया, क्योंकि दुनिया चाहे जितनी भी मिल जाए वो थोड़ी ही है, उसके लिए दीन को बेच देने से जो जहन्नुम खरीद ली, तो क्या उसके मुकाबले में ये तो थोड़ी ही है ना, जाहिर ही बात, कितनी घटिया चीज को ले लिया और इतनी कीमती चीज बेच दी। इंसान जब कुछ बेचता है तो कुछ कुछ हासिल होता है ना, कुछ देता है तो कुछ लेता है, तो दिया क्या, अल्लाह की आयात को डिस्टॉर्ट कर दिया, और लिया क्या, जहन्नुम का सौदा। अब चाहे अब साथ में तारीफें आ रही हैं, शायद में पैसे भी मिल रहे हैं, एक उन्होंने घर भी दे दिया है, अब उन्होंने कहा कि आपकी प्रमोशन भी कर देंगे, और वाह वाह भी हो रही है, और टीवी पे प्रोग्राम भी मिल गया है, और फलां भी हो गया। लेकिन अगर अल्लाह की आयतों को ही बेच दिया तो ये सारी चीजें थोड़ी कीमत ही है, थोड़ी सी जिंदगी का सामान है ना। अमन लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फऊलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह की आयात के मुताबिक फैसला नहीं करता वो तो काफिर है। काफिर से मतलब ये नहीं है कि वो अगर मुसलमान है तो वो अब आज से काफिर हो गया। काफिर से मतलब ये अमल से, यानी उसने इनकार कर दिया, अकीदे में नहीं, अकीदे का कुफर नहीं है ये कि आज से आप उसको फतवा दे दे तू तो काफिर है। क्यों? इसलिए कि हमने आज पढ़ लिया कि तुम जो अल्लाह की आयतों के मुताबिक फैसला नहीं करते, तो वो नहीं, अमली काफिर है। यानी अल्लाह के नजदीक कि इतने बड़ा बुरा काम है कि उसको कुफर कहा गया। किसको कहा गया? कि अल्लाह की नाजिल करदा आयात आ गई है, शरीयत आ गई है, कानून अल्लाह ने दे दिया है, फैसला अल्लाह ने सुना दिया है जब कि इस चीज का ये फैसला है। तो अब हम कौन होते हैं कि हम कहें कि मैं अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, या फिर हम नहीं कोई गैर लोग इंसान दूसरे फैसले कर दें, क्योंकि ये जो अल्लाह ने फैसला किया है ये तो हमें लगता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि ये तो जालिमाना सजाएं हैं, या ये तो गलत फैसले हैं, अल्लाह माफ करे हमें। तो जिसने ये काम कर दिया कि वो अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला से बढ़ के और कौन फैसला अच्छा कर सकता है, कौन उससे बढ़ के हिकमत वाला फैसला करता है और इल्म वाला फैसला कर सकता है। लेकिन दुनिया में आज अल्लाह के फैसलों को एक तरफ रख दिया गया, और पूरी दुनिया को क्या कहना, वो लोग जो इन इन किताबों को मानते हैं, जो कुरान को मानने वाले हैं, वो ही कहते हैं कि कुरान का फैसला हमें कबूल नहीं है। कुरान फैसले क्या देता है? शरीयत, कानून, हमें नहीं चाहिए ये, उससे डरते हैं। आप पूछ के देख लें लोगों से, फैसला कराना तो दूर की बात है, आप छोड़ें फैसले करने का तो बाद की बात है, आप सिर्फ इतना सर्वे करें। जरा किसी मजलिस में बैठे रहते तो मैं आपको हमेशा ऐसे होमवर्क देती रहती हूँ ताकि आप जरा चेक करें कि आप दुनिया में लोगों की या मुसलमानों की सोच क्या है। जरा पूछें तो सही कि अगर शरीयत नाफिज हो जाए हमारे मुल्क में तो कैसा है ये। आप देखेंगे लोगों के परेशानी की क्या हालत हो जाती है, उनको लगता है हाय शरीयत नाफिज हो गई ये तो पता नहीं क्या होगा, हाय हाय हमें तो बुरके पहनने पड़ जाएंगे, हमारे तो ये सारे ड्रामे और वाहियात चीजें जो चलती हैं हमारे स्क्रीनों के ऊपर वो तो सारी बंद हो जाएंगी, आए लोगों के हाथ कट जाएंगे, आए पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जो जिना और ये फहाशी है ये तो सारी बंद हो जाएगी, लोगों को तो रजम करना पड़ जाएगा, पता नहीं कितने लोग तो रजम ही हो जाएंगे, आए फिर क्या आदमी कहें कि हमें तो मस्जिदों में जाना पड़ेगा, आए हमारे तो दाढ़ियां रखनी पड़ेंगी, हमें तो ये हो जाएगा, परेशानी का आलम देखें फिर आप। और सुबहान अल्लाह, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कुरान, वो कुरान तो अल्लाह की किताब, कुरान तो नूर, कुरान तो हिदायत, कुरान से ज्यादा अच्छी तो कोई बात ही नहीं हर मुसलमान कहता है। किसी से भी पूछ लें, कोई कितना ही गया गुजरा होगा, बदअमल भी होगा, वो भी कहेगा कुरान, कुरान के तो कसीदे पढ़ा लो, तो इनसे कितने पढ़ा लो, तारीफें सुन लो इनसे कुरान की जितनी मर्जी। उसके बाद जब आप वो कहें ओ खुदा के बंदो ये कुरान किस लिए आया है, ये इसलिए ही नाजिल हुआ ना कि हम इसके मुताबिक चलें, तो कहते नहीं वो नहीं हमने करना, कानून इस कुरान का कानून नहीं आ सकता मुल्क के अंदर, वो तो हमारी बहुत चीजें बंद करा देगा, ये तो कुरान का कानून आ गया, हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। या अल्लाह, तो फिर क्यों दावे करते हो? तुम तो कहते हो कि ये किताब महफूज है, ये अल्लाह की तरफ से आई है। कितना बड़ा सिन है ये बात कि इंसान ये तो मानता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन उसके बाद कहता मैं नहीं मानूंगा इसको, अल्लाह की तरफ से आई भी। एक तो बंदा है ना उसको मानता ही नहीं है, देखो वो तो काफिर है ना, वो मानते ही नहीं कि अल्लाह की तरफ से किताब है। तुम कितनी बड़ी जुर्रत करते हो कि तुम ये कहते हो ये अल्लाह का कलाम है, ये तुम कहते हो ना ये अल्लाह का कलाम है, वो फिर कहते हो नहीं इसके फैसले हमें कबूल नहीं है। तो डायरेक्टली तुम ये कह रहे हो ना कि अल्लाह का फैसला मुझे नहीं कबूल है, मैं नहीं मानती। शरीयत क्या है? अल्लाह का फैसला है। इनका तो लगता है दम घुट जाता है शरीयत सुन के। बताओ कैसे मुसलमान हो तुम कैसे ही कुरान पे ईमान रखने वाले हो? उनकी ये जो बात आ रही है ना कि वो अपनी किताब उनके पास है, उसके अंदर फैसले हैं, छोड़ के उसको चल पड़े हैं बाहर। आज मुसलमान तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम्हारी किताब के अंदर सारे फैसले, तुम कहते नहीं हम इंसान बनाएंगे, वो फलाने वो बनाएंगे फैसले, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये फैसले हैं, वो जो भी हमारे तरीके, जो हमारी अदालतों के फैसले, जो हमारी जिंदगियों के फैसले, वो सारे इंसान बनाए, अल्लाह वाले फैसले हमें नहीं चाहिए क्योंकि बड़े सख्त हैं भाई, ये नहीं हमसे हो सकते। वो अपने गिरेबानों में तो झांको, तुम किधर खड़े हुए हो? ये दर्द है, ये दर्द क्या, किधर हम पहुंच गए हैं? ये दर्द होता है अंदर, क्या ईमान है हमारा कुरान पे, क्या सिर्फ बातें ही नहीं है? तो ये मुंहों की बातें ही अगर कबूल हो जानी होती तो क्या पहली आयत ही हमने पढ़ी कि वो ईमान के मुंह से दावे करते हैं, कहते हैं हम ईमान लाए हैं, हम भी कहते हैं हम कुरान पे ईमान रखते हैं, लेकिन इनके दिल में ईमान नहीं है। क्योंकि अगर वाकई तुम्हारे दिल में ईमान होता तुम कहते इस कुरान से ज्यादा तो भला किसी का फैसला हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने ही मुसलमान आज कहते हैं कि नहीं हम शरीयत से डरते हैं, हम अल्लाह के कानून से डरते हैं। भाई अल्लाह अकबर, और हमको ये पता ही नहीं कि वो क्या क्या रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया जो भी जिसके पास भी, वो चाहे यहूदियों के पास आई, अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात उन्होंने नहीं माने, ईसाइयों के पास आए चाहे उन्होंने नहीं माने, चाहे मुसलमानों के पास, जिसके पास भी, वमल्लम, और जो कोई भी बंदा जिसके पास अल्लाह ने फैसला उतार दिया तो उसने कहा मैंने नहीं मानना, तो वो इनमें से है। अब ये फैसले क्या सिर्फ मैं शरीयत वो कह रही हूं कि शरीयत का कानून मुल्क में आ जाए, नहीं, हम तो इसके बड़े हामी हैं जी, हम तो इसके बड़े वो बहुत इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा तो ये बताएं आपको, हम कहते हैं अली हमारे अंदर तो कोई, जाहिर है हम तो नाफिज कर नहीं सकते, हमारा क्या कसूर है, अब नहीं करते वो तो हम क्या करें इसके अंदर। तो ठीक है, सही है, आपकी बात सही है, आपकी इतनी नई पहुंच है, आपका यहां तक आपके अंदर नहीं है कुव्वत, ये तो समझ आती है बात। लेकिन याद रखिए ये फैसले सिर्फ अदालतों में करने वाले फैसलों की बात नहीं हो रही, बल्कि हर इंसान इस बात का मुकल्लफ है, यानी इस बात की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अल्लाह के अहकामात को अपनाए। क्या सिर्फ सजाओं के फैसले हैं जो अल्लाह ने दिए, और नहीं कोई दिए भी? कुरान पढ़ रहे हैं ना आप, जिंदगी के तो सारे मामलात में इससे रहनुमाई हासिल करने को कहा गया। बताएं आप, क्या क्या सिर्फ ये सजाओं के हाथ काटने की, और ये कि पूरे कुरान में क्या सिर्फ यही बातें, और अल्लाह ने कोई फैसला नहीं बताया? आपने तलाक के पढ़े, आपने निकाह के पढ़े, आपने तिजारत के पढ़े, सूद के पढ़े, आपने अदालतों में फैसलों के पढ़े, आपने कानून के पढ़े, आपने अदलो इंसाफ के पढ़े, आपने खाने पीने के बारे में फैसले अल्लाह के पढ़े, आपने शादियों के बारे में फैसले अल्लाह के पढ़े, आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं, आप आगे भी पढ़ लेंगे, पहनने ओढ़ने के बारे में भी पढ़ लेंगे, और बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर उसके बाद बताएं क्या किया आपने, जब अल्लाह ने आपको फैसला दे दिया तो आपको ये बहुत है ना कि भाई हाँ आप मुल्कों में नहीं करते, हम बेचारे क्या करें। चलो भाई आपको इसमें एक्सक्यूज समझ समझ आ गया, आपका बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेचारे ही हैं। आपको अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात नाफिज करने से तो कोई नहीं रोकना, या वहां पे भी कोई है पुलिस खड़ी, वहां पे तो कोई नहीं आपको कुछ कह रहा, उसमें कितना नाफिज कर लिया आपने? हमें तो चलने फिरने बोलने चालने नजरें तक किधर उठानी है और किधर झुकानी है वो तक बता दिया इस कुरान ने, चलना कैसे है जमीन पे वो भी बता दिया, जुबान किस चीज पे खोलनी है और किस पे नहीं खोलनी वो भी बता दिया, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का भी बता दिया। लेकिन क्या करें, लोगों का डर, और ये थोड़ी कीमत, ये दुनिया दुनिया ये थोड़ी सी कीमत है, इसके पीछे हम भी बेच देते हैं अपना दिल। हर लोगों का डर इतना ज्यादा है कि वो हम नहीं मानते,